أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئات الألف مرتين. سورة أعراف آية نمبر 57.
وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.
اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خشک کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو.
والبلد الطیب
اس سے 57 آیت سے پہلے 56 آیت کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ودعوا خوفا ودعوا عاما ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ پسند نہیں کرتا زمین میں اس کو فساد مت پھیلا ذرا اصلاح کے بعد. یعنی اللہ تعالیٰ نے تم انسان کو پیدا کیا ہے ایک امن پسند انسانیت کا سبق انسان کو دیا ہے، تو وہ امن ہمیشہ امن پسند رہے بجائے اس کے کہ وہ فساد کرتا رہے. آدم علیہ السلام کے بعد ان کے جو بیٹے تھے اس کے بعد سے پھر یہ فساد شروع ہوا آہستہ آہستہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو ہمیشہ امن میں رہو، فساد مت پھیلاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے خوف مطلب امید اور ڈر کے درمیان میں رہو. یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو بھی اور اس کی رحمت کی امید بھی کرو. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، زیادہ ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک کام کرنے والے ہیں. اب نیک کام کرنا مطلب ہمیں سمجھنا ہے کیا ہے، اب اس کو پہلے سمجھتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ مجھے ہر قسم کے فساد سے منع کر رہا ہے. اب فساد کے فساد کا ایک معنی نہیں ہے کہ کہیں لڑائی جھگڑا، نہیں، ہر چیز میں دوسروں کے حقوق کا خیال نہ رکھنا، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ سب فساد میں آتا ہے. چاہے وہ اپنے گھرانے کے طور پہ ہو یا گھر کے طور پہ ہو یا گلی محلے میں ہو یا ملک میں ہو، شہروں میں ہو، پڑوسیوں میں ہو، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فساد کو پسند نہیں کیا. اب اس فساد کو اللہ تعالیٰ نے کیا پسند کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو تم بجائے اس کے کہ تم اس کے لیے کوشش کرو اپنے دماغ کو، اپنے عقل کو، اپنی صلاحیتوں کو اس اللہ کی پہچان میں اور اپنی پہچان میں صرف کرو، بجائے اس کے کہ تم دنیا کی محبت میں اور دنیا کی چیزوں کے لیے دنگا فساد اور لڑائی جھگڑا کرو، اور اللہ ہی سے ہر چیز کی امید رکھو، اور اللہ کے ناراضگی سے ڈرتے رہو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. کیوں کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ ہے. اللہ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی پہچان کے لیے. تو جب تک انسان اپنے کو نہیں پہچانے گا وہ اللہ کو نہیں پہچان سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دماغ، آنکھیں، کان، زبان، ہر تمام نعمتیں دنیا کی یہ کیوں دی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، یہ تمام چیزیں جاننے. تو اب اس کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ. اب وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پیغمبر، اپنے محبوب کو بھیج کر ان کے ذریعے سے مجھے اپنا پیغام بھجوایا ہے. تو جب میں ان کا راستہ لوں گی اور ان کے راستے پہ چلوں گی تو میں अमन ही अमन होंगे। इंसानियत में मेरा बुलंद तो इम्तियाज़ होगा, अखलाक के बुलंदियों पर होंगी अगर मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलूंगी। तो ऐसे लोगों को अल्लाह कह रहा है कि ऐसे लोगों के लिए मेरी रहमतें ही रहमतें हैं। तो फिर अल्लाह ताला आगे दूसरी आयत में अपनी शान बता रहा है कि देखो मैं कौन हूँ, मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ। अच्छा, अब हम अल्लाह को तो नहीं पहचान रहे, हम अपने आप को पहचान रहे हैं। तो हमें बजाय इसके कि हम अपने आप पे अपना वक्त ज़ाया करें, बेहतर है कि हम सोचें कि मुझे अल्लाह ताला ने किस हस्ती में, अल्लाह कौन है, किधर है, उसकी क्या शान है, उसका क्या मर्तबा है, उसकी क्या नेमते हैं, और वो किस तरीके से उसने मुझे पैदा किया है, और किस तरीके से उसने दुनिया की ये तमाम चांद सूरज ज़मीन आसमान तमाम चीज़ें जो मेरे लिए पैदा किए हैं किस तरीके से पैदा किए हैं। और अल्लाह ताला मुख्तलिफ पहराइयों में मुख्तलिफ जगहों पे अल्लाह ताला अपने बारे में बात करता रहता है कि बस मैं ही हूँ। तू बात क्यों करता है? इसलिए कि ए इंसान, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, बस तुझे मेरी तरफ ध्यान रखना चाहिए। मेरा अल्लाह का ध्यान मेरी तरफ हर वक्त 24 घंटे है, लेकिन मेरा ध्यान अल्लाह की तरफ नहीं है। मैं अल्लाह को पहचान नहीं रही, मैं अल्लाह को जानने की कोशिश नहीं कर रही। तो जब ही अल्लाह ताला ने मुझे बार बार मुझे अल्लाह ताला गफलत की नींद से उठाने के लिए मुख्तलिफ आयतों की शक्ल में अपनी पहचान करवाता है। यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है वह वल्लजी युरसिलुर रियाहा बुशरम बेना यदे है रहमत ही। अल्लाह कहता है कि देखो जब मैं तुम्हारी तरफ बारिश बराने रहमत तुम्हारी तरफ भेजना चाहता हूँ, तो फिर सबसे पहले मैं हवाओं को, ठंडी ठंडी हवाओं को तुम्हारी तरफ रहमत की शक्ल में भेजता हूँ, ताकि तुम अब खुशहाली है, गर्मी है, उस वक़्त हमें इन ठंडी ठंडी हवाओं रहमत की कितनी ज़रूरत होती है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं तुम्हें कितना, जब भी तुम्हें ज़रूरत होती है मैं तुम्हारी तरफ मुख्तलिफ शक्ल में अपनी खुशखबरियाँ भेजता रहता हूँ, हवाओं की शक्ल में, बरान रहमत की शक्ल में। अच्छा, यहाँ तक के ऐज़ा, वो कैसे होता है, यहाँ तक के ऐज़ा क़ल्लत सहाबन सिकालन सिकालन सुख ना हो ले वला दिन मैतिन फ़अन्ज़लना बिहिल मा फ़अख़रजना बिही मिनल समरात ते कुल समरात कज़ालिक नुख़रिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह कहता है कि देखो मैं भारी यहाँ तक कि हवाएं, वो जो हवाएं हैं वो बादलों को उठा लेती हैं और उनको अल्लाह के हुक्म से, सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, तो अल्लाह ताला उन बादलों को, उन भारी भारी बादलों को जो हवाओं के ज़रिए से अल्लाह ताला ने ऊपर उठाया है, तो अल्लाह कहता है मैं इनको उस जगह जो ज़मीन खुश्क है, वीरान है, बंजर है, मैं वहाँ भेजता हूँ और फिर इसके ज़रिए यानी पानी बारान रहमत करता हूँ और इसके ज़रिए से मुख्तलिफ़ किस्म के फल फ्रूट मेवाजात सब्जियाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे जिस्म की जो ज़रूरत है उनको मैं उस ज़मीन से, उन पानी की मदद से मैं तुम्हारे लिए पैदा करता हूँ। फिर अल्लाह कहता है जिस तरीके से मैं ये करता हूँ तुम्हारे जिस्म की ज़रूरतें पूरे करने के लिए, मैंने हर चीज़ का ख्याल रखा हुआ है, इसी तरह तुम्हारी रूह जो मर गई है उसको ज़िंदा करने के लिए मैं तुम्हारे तरफ से रूहानी बारिश करता हूँ। रूहानी यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में अल्लाह के रंग, जब हम अल्लाह की शक्ल अल्लाह को लेते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मुर्शिद के ज़रिए अल्लाह और रसूल को लेते हैं, तो हमारी रूह में वो ताजगी आती है, वो ज़रखेज़ी आती है, वो लताफत आती है। तो और फिर हमें अल्लाह ताला इसको, ताकि हम जैसे तुम्हारे जिस्म के लिए ज़रूरत है ग़ज़ा की, इसी तरह तुम्हारी रूह के लिए रूहानी ग़ज़ा की ज़रूरत है। और वो रूहानी ग़ज़ा क्या है? क़ुरान, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला की याद, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा रहना। तो इसी तरह जब इंसान अगर चाहे तो वो जो उसकी रूह मर गई है उसको जिंदा करना चाहता है, यानी रूह का ताल्लुक अल्लाह से है। अब मैंने अल्लाह को, अल्लाह हर इंसान के अंदर, जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर अल्लाह की रूह होती है, हर इंसान के अंदर अल्लाह है। लेकिन अगर मैं नहीं पहचान रही और मैं गफलत की नींद से हूँ, अगर मैं अपने को इस गफलत के नींद से ख़त्म करना चाहती हूँ और उठना चाहती हूँ, अल्लाह को पहचानना चाहती हूँ, तो अल्लाह ताला ने उसका भी बंदोबस्त किया हुआ है। क्या? क़ुरान और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वक्त के इमाम, उनके ज़रिए से आप वो रूहानी ग़िज़ा हासिल कर सकते हैं। आपकी जो वो मरी हुई रूह है वो ज़िंदा हो सकती है। आपकी वो जो रूह दुनिया की मोहब्बत की वजह से गर्द आलूद हो गई है, दुनिया की तलब में गर्क रहने से गर्द आलूद हो गई है, अगर आप चाहते हैं कि उस पर से वो गर्द हट जाए, मैल कुचैल दूर हो जाए और वो साफ पाक हो जाए, तो आपको अल्लाह की तरफ, अल्लाह के महबूब की तरफ और अपने वक्त के इमाम को पहचानेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता जब, और ये तलब आपको ख़ुद करनी है, ये कोशिश आपको ख़ुद करनी है, ये मेहनत आपको ख़ुद करनी है। अल्लाह ताला ने तो कर दिया, क्या कर दिया? अल्लाह ताला ने अपने महबूब को भेज दिया और अपना पैगाम मुझे कुरान की शक्ल में दे दिया। और अगर मैं चाहती हूँ तो अब क़यामत तक अल्लाह अपने महबूबों को भेजता रहेगा, और अगर मैं चाहती हूँ तो मैं उनसे कनेक्शन करूँ और अपनी रूह जो मर गई है उसको दोबारा ज़िंदा करूँ। अल्लाह ताला मुझसे यही चाहता है, क्योंकि अल्लाह की तरफ, अल्लाह के पास से आए हैं, अल्लाह की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर मैंने इस दुनिया में अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना कनेक्शन नहीं किया, अल्लाह और रसूल से नहीं जुड़ी, तो वहाँ मुझे रब नहीं मिलेगा, वहाँ मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मिलेंगे। क्यों? कि मैंने जो तरीक़ा दुनिया में इख्तियार किया था वो तरीक़ा मैंने लिया था शैतान का, वो तरीक़ा लिया था जो अपने नफ्स का, अपनी मर्ज़ी का। अब अगर मैं बहैसियत मुसलमान भी हूँ तो वो जो मैं मुसलमानी कर रही हूँ, जो इबादत कर रही हूँ, जो हुकूक़ व लिबाद अदा कर रही हूँ, वो मैं सब अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। मैंने अल्लाह की मर्ज़ी को नहीं पहचाना, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को नहीं लिया, उनके उसवा हुस्ना को नहीं लिया, मैंने अपने लिए वक्त के इमाम को नहीं चुना, तो मुझे ये तमाम चीज़ें नहीं मिल सकती। और ये तमाम चीज़ें मुझे अपने वक्त के इमाम को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह इसी दुनिया में है। अगर मैंने इस दुनिया में अपने रब से कनेक्शन नहीं किया तो वहाँ मुझे रब नहीं मिलेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है,
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون।
और जो सुथरी सरजमीन होती है उसकी पैदावार तो अल्लाह के हुक्म से खूब निकलती है, और जो खराब है उसकी पैदावार बहुत कम निकलती है। इसी तरह हम दलाइल को तरह तरह से बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो शुक्र करते हैं।
अब अल्लाह ताला इसमें फिर मुझे बता रहा है, वल बलदुल तैयब यखरुजु नबातहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबसु ला यखरुजु इल्ला नकदा कज़ालिका नुसर्रिफुल आयाति लिक़ौमिन यशकुरून। अल्लाह कहता है जो पाक साफ सुथरी ज़मीन होती है कि अल्लाह के हुक्म से उसमें पैदावार खूब अच्छी निकलती है, और जो ख़राब होती है तो उसकी पैदावार नहीं होती, कहीं 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 हुई कहीं नहीं हुई, सूखे डंडे निकलते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ये इस तरीके से मैंने तुम्हें एक ज़मीन की शक्ल में, अल्लाह ताला ने अब यहाँ अपने आप को एक ज़मीन की शक्ल में, मुझे अल्लाह ताला ने एक ज़मीन की शक्ल में पेश किया है कि ज़मीन, उस ज़मीन मेरी कौन सी ज़मीन है? मेरी उस दिल और दिमाग की वो ज़मीन है, जो मेरा कल्ब है, मेरा दिल और दिमाग है, मेरी सोच और मेरा जो वो मेरी ज़मीन है वो बंजर हो चुकी है। अब उस ज़मीन को मुझे ज़रख़ेज़ बनाना है। अब ये इस तरफ अल्लाह कहता है मैं इस तरीके से करता हूँ। अब मुझे मेरी ज़मीन बंजर हो चुकी है, यानी अब मैंने उसको दुनिया की मोहब्बत और लालच, हसद, कीना, बोगस, झूठ, गीबत, मुनाफिकत, तमाम चीज़ों से इतना زہر آلود کر دیا ہے کہ اس میں کوئی نیکی کی بات سماتی نہیں ہے, کوئی اللہ اور رسول کا خوف آتا نہیں, اللہ کا خوف آتا نہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی نہیں. تو اگر میں یہ سمجھتی ہوں, اب مجھے خود اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عقل دی ہے, اب مجھے یہ عقل مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے دی ہے, اور یہ عقل میں نے لگا دیا دنیا کی پہچان میں, تو یہ میں نے غلطی کی ہے. اب مجھے اس غلطی سے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف راستے مجھے دیے ہیں اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے, مجھے طریقے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ مختلف بتائے ہیں, میرے مزاج کے مطابق بتائے ہیں کہ کیسے تم اس اندھیرے سے نکل سکتے ہو. تو اب مجھے یہ عقل اللہ تعالیٰ نے دیے, تو اب مجھے سوچنا ہوگا اپنے بارے میں کہ میں کون ہوں, کہاں سے آئی ہوں, کیسے میں یہ زندگی جو گزار رہی ہوں پریشانی کی حالت میں, ڈپریشن کی حالت میں, غموں کی حالت میں, فکروں کی حالت میں, یہ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی اس لیے دی ہے؟ اگر مجھے خراب شوہر ملا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے میری قسمت اتنی خراب لکھ دی ہے؟ مختلف جو چیزیں ہیں مجھے سوچنا ہوگا. نہیں, مجھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے پیدا نہیں کیا, مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. اب یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جو میرے سامنے رکھ دیے ہیں, شوہر کی شکل میں, بھائی کی شکل میں, بچوں کی شکل میں, ماں باپ کی شکل میں, دنیا والوں کی شکل میں, یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے ساتھ جو مجھے طریقہ کار رہنے کا, ان کے ساتھ جو سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے طریقے بتائے ہیں. اگر میں اللہ سے رجوع کروں گی, اللہ کو کی طرف جاؤں گی اور سمجھوں گی, اپنے آپ کو پہچانوں گی, قرآن اور سنت کو سمجھنے کی کوشش کروں گی, تو ضرور میری جو یہ غفلت کی نیند ہے اس سے میں اٹھ بھی جاؤں گی اور میری آنکھیں بھی کھلیں گی کہ میں کیا کر رہی ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا مجھے اس لیے نہیں دی کہ میں اس عمر کو اور اس اللہ تعالیٰ نے اس کو میں ضائع کروں, اس دنیا کی نعمتوں کو اور اپنی عمر کو ضائع کروں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو, میں نے تمہارے لیے تمہارے جسم کی طاقت کے لیے, اس کے رزق کے لیے میں نے تمام دنیا کے اسباب تمہارے لیے پیدا کر دیے ہیں, وہ تمہارے جسم کے لیے ہیں, پھل فروٹ میوادات یہ وہ سب کچھ, لیکن اسی طرح تمہاری ایک روح ہے, اس کے لیے میں نے انتظام کیا ہے, اس کو میں نے ایسے نہیں چھوڑا. ظاہر روح مجھ سے تعلق, اللہ سے تعلق رکھتی ہے, تو اب اس روح کو لطافت دینے کے لیے, اس کو ہمیں اس کی کو بڑھانے کے لیے, اس کو اللہ کی طرف پرواز کے لیے تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دیا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں, وقت امام دیے. تو اب مجھے سوچنا ہوگا کہ میں جو اس دنیا میں زندگی گزار رہی ہوں, کیا میں اسی مقصد کے تحت گزار رہی ہوں جو جس مقصد کے تحت اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے؟ ایک چیز ہم کسی مقصد کے لیے بناتے ہیں, اگر وہ ہمارا کام نہ دے تو ہم تو پھر اس سے کام نہیں لیتے, ہم تو اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. تو میری زندگی کا مقصد اللہ ہے, اگر میں نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اپنی جو ردی کی ٹوکری ہے جہنم, اس میں مجھے ڈال دے گا. کیوں؟ کہ میں نے اپنی زندگی کو پہچانا ہی نہیں, اپنے آپ کو پہچانا نہیں. تو اب مجھے پہچاننا ہے کہ میرے دل و دماغ کی جو زمین ہے, روح کی جو زمین ہے, وہ کیا بنجر ہے؟ کیا اس میں اتنی اب نمی, ذرا سی بھی نمی نہیں ہے کہ اس میں اللہ کا خوف ہے, اللہ کی محبت آئے؟ تو اگر وہ بنجر ہو گئی ہے تو مجھے طریقے سوچنے کہ کس طریقے سے اس بنجر زمین کو میں کیسے اس کو دوبارہ سے زرخیز بناؤں. اللہ کی ذات سے نومید انسان نہیں ہونا چاہیے, اس کو ہر وقت اللہ کو کیسے ہمیں با امید رکھنا چاہیے, اچھا گمان رکھنا چاہیے, اور اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اب اگر میں سمجھتی ہوں کہ میری جو عادتیں ہیں وہ اللہ اور رسول کو پسند نہیں ہیں, ظاہر اللہ اور رسول نے مجھے قرآن میں ہر ایک چیز اپنی پسند ناپسند بتا دیا, اب مجھے اپنے اوپر کام کرنا ہوگا کہ میں دیکھوں کہ میرا اخلاق ویسا ہی ہے جیسے اللہ اور رسول چاہتے ہیں. کیا میں آنکھوں کا وہی استعمال کر رہی ہوں جیسے جس استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دی ہیں؟ کیا مجھے یہ کان جو اللہ تعالیٰ نے دیے, میں اس کا استعمال وہی کر رہی ہوں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے کان دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تمام جو جسم, ہاتھ پیر, عقل جو دی ہے جس مقصد, کیا میں اس سے اس مقصد کو پورا کر رہی ہوں؟ اگر نہیں کر رہی تو کیسے کروں گی؟ तो उसके लिए मुझे सोचना है, गौर फिक्र करना है, तदब्बुर करना है और अब तलाश शुरू कर देनी है अल्लाह की से उम्मीद के साथ कि मुझे अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। और अब मैं तलाश करूँ, सबसे पहले मैं नीयत बनाऊँ और फिर मैं कोशिश शुरू कर दूँ कि कैसे मैं अल्लाह से मुलाकात कर सकती हूँ, कैसे मैं अल्लाह के रंग में रंग सकती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे अपना खलीफा बनाया है। तो अल्लाह ताला ने मुझे कहा है कि मेरे रंग ले लो, खिज़बतुल्लाह, मुझे अल्लाह ताला ने कहा है मेरे रंग ले लो। अब मुझे ये देखना है कि अल्लाह के रंग कौन से हैं। अब जब मैं इस जस्तजू में लगूंगी तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा कि अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह ताला बुर्दबार है, तमाम अल्लाह ताला के जो नाम है वो अल्लाह की सिफात है। अब अल्लाह ने कहा वो ले लो, अल्लाह मुझसे कह रहा तुम वो ले लो, उस उन तमाम अल्लाह रहीम है, तुम अपने में रहमानियत पैदा कर लो, अल्लाह रहमान है तुम भी रहमान बन जाओ, अल्लाह गफूर माफ़ करने वाला तुम भी माफ़ करने वाले बन जाओ, अल्लाह ताला सत्तार है वो तुम भी सत्तार बन जाओ, अल्लाह ताला बुर्दबार है मैं भी बुर्दबार, तमाम नाम। अब मुझे इस पर काम करना होगा अपने आप पर और हमेशा हर वक्त मुझे कोशिश करनी होगी। तो जब मैं इस तरीके से शुरू करूँगी तो मेरी वो जो रूह की जो ज़मीन है, वो दिलो दिमाग की जो ज़मीन है वो बंजर हो गई थी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने काम शुरू कर दिया तो उसमें, और फिर मैं किसी अल्लाह वाले से मिल गई तो वो अल्लाह वाले से मिलना मेरे लिए भी सोने का सुहाग, सोने पे सुहाग होगा कि अल्लाह ताला ने, मैं कोशिश में लगी हुई थी, अल्लाह ताला ने उस कोशिश को कबूल किया और अल्लाह ताला ने मेरे सामने अपना एक नेक बंदा, अपना एक नुमाइंदा मेरे सामने ले आया। अब मैं उसके सामने सिलेंडर कर दूंगी और उसको सुनूंगी, उसको जानूंगी, उसको पहचानूंगी और उसके सामने मैं वैसे ही अमल करूंगी जैसे अल्लाह चाहता है और रसूल पाक सल्लम चाहते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तवज्जो से, उसकी मोहब्बत से, मेरे अखलास से, मेरी मेहनत, मेरी कोशिश से, उनकी मेहनत से, उनके उससे आहिस्ता आहिस्ता मेरे जो खुश बंजर ज़मीन थी रूह की वो आहिस्ता आहिस्ता सैराब होनी शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता मैं इस तमाम उससे बंजरपन, जो मेरी बद अखलाक हूँ, बद अखलाकी ख़त्म हो जाएगी, गुस्सा है गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, गिबत की ख़त्म हो जाएगा, झूठ बोलना ख़त्म हो जाएगा, हसद ख़त्म हो जाएगा, जेलिसी ख़त्म हो जाएगी, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और मुझ में आ जाएगा सुकून, मुझ में आ जाएगा बर्दाश्त, मुझ में आ जाएगा सब्र, मुझ में आ जाएगा दरगुजर करना, मुझ में आ जाएगा अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का खौफ, मुझ में आ जाएगा अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना अल्लाह के लिए, न कि अपनी ज़ाती मफाद के लिए। अपनी ज़ाती मफाद को तो मुझे कुर्बान करना है अल्लाह के आगे। तो अब ज़ाती मफाद ख़त्म हो गया, क्यों? कि तकदीर मेरे अल्लाह के हाथ में, रिज़्क मेरे अल्लाह के हाथ में, इज़्ज़त मेरे अल्लाह के हाथ में, मोहब्बत मुझे वो देने वाला, दुनिया का कोई इंसान मुझे ज़र्रा भर ना फ़ायदा पहुँचा सकता है ना नुकसान पहुँचा सकता है, ये अल्लाह ताला कहता है। तो अब मुझे ये यकीन कामिल अपने अंदर पैदा करना है और अल्लाह के, तो जब मैं इस तरह की ज़मीन मेरी रूहानी हो जाएगी तो फिर मैं उसमें ज़रा सी भी नेकी करूँगी अल्लाह की मखलूक के साथ, ज़रा सी भी मैंने नियत की उसका मुझे 100 गुना फ़ायदा होगा। इस वक्त हमारी मिसाल क्या है कि हम नेकियों पे नेकियां कर रहे हैं, इबादत पे इबादत कर रहे हैं, हज उम्रे कर रहे हैं, खैर खैरात कर रहे हैं, लेकिन वो सब अल्लाह ताला मुझे मेरे धूल की तरह उड़ा देगा। क्यों? कि मैंने अपने को नहीं पहचाना, मैंने अल्लाह को नहीं पहचाना। जो कुछ मैं नेकियां कर रही हूँ, जो इबादत कर रही हूँ, जो रियाजत कर रही हूँ, अपनी मर्जी से कर रही हूँ, अपने दुनियावी मफाद के लिए कर रही हूँ या जन्नत के उसमें कर रही हूँ कि यहाँ ये करूँगी तो सवाब मिलेगा, ये करूँगी तो सवाब मिलेगा, ये करूँगी तो रिज़्क में बरकत आ जाएगी, ये करूँगी तो अल्लाह का फजल हो जाएगा, ये मैं इस चक्कर में पड़ी हुई हूँ। मैं अल्लाह को लेने के चक्कर में नहीं पड़ी हुई, मैं रसूल पाक सल्लम के कदमों में बैठने की कोशिश नहीं कर रही, मैं उन तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रही। तो मुझे ये तमाम चीज़ें जब मैं सही रास्ते को ले लूँगी तो ये जो तमाम दुनिया की जो चीज़ें हैं वो मेरे लिए ज़ीरो की हैसियत हो जाएंगी, उसकी सारी वक़्त ख़त्म हो जाएगी, ना घर की, ना दौलत की, ना जेवरात की, ना रिश्तेदारियों की, किसी चीज़ की वक़्त नहीं होगी। अगर जो मैं ये ड्यूटियाँ दूंगी तो मेरा एक ही मकसद होगा, मेरा रब इससे राज़ी हो जाए, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे राज़ी हो जाए, मेरा मकसद ये होगा, मेरा मकसद यही होगा और कुछ नहीं होगा। तो हमें फिर अल्लाह कहता है अगर मैंने ये कोशिश नहीं की, अगर मैंने अपने आप को इस तरीके से नहीं संवारा और मैंने मेहनत नहीं की अपने ऊपर, तो अल्लाह को मेरी ज़रूरत नहीं है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह वालों को मेरी ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़रूरत है अल्लाह की, मुझे ज़रूरत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मुझे ज़रूरत है अल्लाह वालों की। तो हर कुछ कोशिश मुझे अपने आप से खुद से करनी होगी। तो जब मैं खुद से एक कदम ले लूँगी तो अल्लाह कहता है एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ आऊँगा, तुम चल के आओ मैं दौड़ के तुम्हारी तरफ आऊँगा। अल्लाह ताला तो मुझ पर इतना मेहरबान है, वो तो इतनी मुझसे मोहब्बत करता है, वो तो मुझसे इश्क करता है, बगैर उसकी नाफरमानी में मैं सारा दिन गुजारती हूँ, लेकिन उसकी रहमतें चारों तरफ मेरी हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, उन तमाम रहमतों को मैं नाशुक्री में बदल देती हूँ। तो अब मुझे समझना होगा, जानना होगा, अगर मैंने नहीं किया तो फिर मेरी मिसाल उस खेत की होगी जो एक तेजाब याफ्ता है, जो नमकीन है, जिसमें जो कुछ भी डालो वो खो जाता है, वहाँ कुछ भी निकल के नहीं देता, वहाँ आबियारी हम नहीं कर सकते, वो एक बंजर ज़मीन है। तो अल्लाह कह रहा है मैं इस तरीके से ये आयते मैंने अल्लाह कहता है मैंने ये आयते इस तरीके से तुम्हें बताता हूँ, खोल खोल के बता रहा हूँ, एक एक नुक्ता बता रहा हूँ, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। अब शुक्रगुजार बनो का क्या मतलब हुआ कि जो नेमत अल्लाह ताला ने मुझे दी है उसको मैं अल्लाह की मर्ज़ी के लिए, अल्लाह को पाने के लिए इस्तेमाल करूं, तो वो शुक्र होगा, वो ज़िक्र होगा, वो अल्लाह ताला कबूल करेगा। इस वक्त मेरी मिसाल तो हिंदू सड़े खुदा नाराज़ा। तो अब रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतन वफिल आख़िरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार।